कथा दो अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि तस्या चिरात महता स्नेहेन मृग काको निवेशतः स च मृगा स्वेच्छया ब्राह्म्यन हृष्ट पृष्टांग केंचित श्रृंगालेनावलोकितः तम दृष्ट्वा श्रृंगालोचिन्त्यत् आह कथमेतन्मासं सुललितं भक्षयामि भवतु विश्वासं तावदुत्पादयामि इत्यालोच्य उपश्रुत्यावब्रवीत् मित्र कुशलं ते मृगिणोक्तं कस्त्वं सब्रूते शुद्रबुद्धि नामा जम्बुकोऽहम् अत्रारण्ये बन्धुहीनो मृतवत् एकाकी निवसामि इदानि त्वां मित्रमासाद्य पुनः सबन्धुर्जीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि अधुना तमानुचरेण मया सर्वथा भवितव्यमिति मृगेणोक्तम् एवमस्तु। मगध देश में चंपक वन नाम का बड़ा अरण्यक है। उस अरण्यक में बहुत समय से हरिन और कौवा ये दोनों गाढ़े प्रेम से रहते थे। स्वेच्छा से घूमते फिरते हृष्ट पुष्टांग उस मृग को किसी श्रृंगाल ने देखा। मृग को देखकर श्रृंगाल ने सोचा, आहा यह सुंदर मांस कैसे खाने को मिले, अच्छा प्रथम उसको विश्वास दूं। ऐसा विचार कर सामने जाके बोला, मित्र हरिन तुम कुशल से हो? मृग बोला, तुम कौन हो? श्रृंगाल बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का श्रृंगाल हूँ और इस वन में संग साथ रहित एकाकी मृत सदृश होकर बसता हूँ, लेकिन अब तुम जैसे मित्र को पाकर फिर मित्र सहित होता हुआ जिवलोक की स्थिति में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब तुम्हारा अनुचर बन के मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मृग बोला, अच्छा ऐसा ही हो। ततः पश्चादस्तंगते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वासभूमि गतौ। तत्र चंपक वृक्ष शाखायां सुबुधिनाम काको मृगस्य चिरमित्रं निवसति। तौ दृष्ट्वा काको वदत, सखे चित्रांग को अयम द्वितीयः। मृगो ब्रूते, जम्बुको यमस्मत् सख्यमिच्छनागतः। काको ब्रूते, मित्र अकस्मादानगन्तुना सह मैत्री न युक्ता तत्र भरदमाचरितम्। उसके बाद भगवान किरण मंडल युक्त सूर्य के अस्त हो जाने पर वे श्रृंगाल मृग दोनों मृग के निवास स्थान में गए। उस निवास स्थान में चंपा के वृक्ष की शाखा पर मृग का प्राचीन मित्र सुबुद्धि नाम का कौवा रहता था। उन दोनों अर्थात श्रृंगाल और मृग को देखकर बोला, मित्र चित्रांग यह दूसरा कौन है? मृग बोला, यह जम्बुक है, अपने दोनों से मित्रता करने को आया है। काक बोला, मित्र चित्रांग एकदम अनजान व्यक्ति से मित्रता करना उचित नहीं, इसलिए तुमने यह ठीक नहीं किया। तथा चोक्तम अज्ञात कूलशीलस्य वाशोदयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेन हतो गृद्धो जरदगवः। श्लोक संख्या 56। जिसके कुल स्वभाव आदि अपरिचित हो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने आश्रय में स्थित विडाल के दोष से वृद्ध पक्षी गिद्ध मारा गया था। तो आहतु कथमे तत् काकः कथ्यति। वे मृग और श्रृंगाल दोनों बोले, गिद्ध और विडाल की कथा किस प्रकार है उसे कहो। काक कहता है, कथा 3। अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकुट्ट नामनी पर्वते महान प्रकटी वृक्षः तस्य कोटरे दैव दुर्वी पाकात् गलित नख नयनो जरदगव नामागृद्धः प्रतिवसति। अथ कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाहारात् किञ्चित् किञ्चित् दुग्धकृत्य तस्मै ददति तेनोऽसो जीवति तेषां सावक रक्षाश्च करोति। अथ कदाचित् दीर्घकर्णनामा मांजरः पक्षिशावकान् भक्षितुं ततागतः। ततस्तमायान्तं दृष्ट्वा पक्षिशावके भर्यात्रैः कोलाहलः कृतः। तच्छ्रुत्वा जरदगवेन उक्तं, कोऽयमायाति दीर्घकर्णो गृहमवलोक्य संभयमाः हा हतोऽस्मि ततोऽयं मां व्यापादिष्यति। भागीरथी गंगा के तट पर गृद्धकूट नाम के पर्वत पर पाकड़ का बड़ा वृक्ष है। उसकी कोटर में अर्थात पोल में दुर्भाग्य वाला तथा जीर्ण नख और नेत्र वाला ऐसा एक जरदगव्य नामक गिद्ध पक्षी रहता था। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षीगण दया करके अपने अपने भोज्य वस्तुओं में से कुछ कुछ हिस्सा बचाकर उस गिद्ध को दे देते थे। उससे गिद्ध अपना जीवन निर्वाह करता था और पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। एक समय दीर्घकण नामक विडाल उन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस स्थान पर आ पहुंचा। आते हुए विडाल को देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत होकर कुलाहल करने लगे। यह सुनकर जरदगव गिद्ध ने कहा, कौन इधर आ रहा है? तब दीर्घकर नाम का विडाल उस गिद्ध को देख भयभीत होकर बोला, हाय हाय, मैं मारा जाता हूँ क्योंकि यह गिद्ध मुझे मार डालेगा। अथवा तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम नागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम। श्लोक संख्या 57। जब तक भय न आया हो तब तक भय से डरना चाहिए, लेकिन जब भय सामने आ गया तब तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अधुनाति सन्निधाने पलायतुम क्षमः तदत्था भवितव्यम तथा भवतु तावद् विश्वासमुत्पादस्य समीपम् उपगच्छामि इत्यालोच्य तमुपश्रुत्या ब्रवीत आर्य तवाम अभिवन्दे गृद्धो अवदत् कस्तव्यम् सो अवदत् माजार्योऽहम् गृद्धो ब्रूते दूरम् अप्सर नो चेत् हन्तुवयोषि मया माजार्योऽवदत् श्रुताम् तावत् मद्वचनम् ततो यद्धम् वध्यस्तदा हंतव्य। अब अति समीप होने से मैं भाग भी नहीं सकता, अच्छा जो होना हो वह हो, लेकिन प्रथम गिद्ध को विश्वास उत्पन्न करने के समीप में जाऊं। ऐसा सोचकर गिद्ध के सामने जाकर बोला, आर्य गिद्ध, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। गिद्ध बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं विडाल हूँ। गिद्ध बोला, दूर जा यहाँ से, नहीं तो मैं मार डालूंगा। विडाल बोला, प्रथम मेरा वचन सुनिए, पीछे अगर मैं मारने योग्य हूँ तो मार डालिए। यतः जाति मात्रेन किम कश्चिद् वध्यते पूज्यते कश्चित् व्यवहारं परिज्ञाय बन्ध्या पूज्योऽथवा भवेत्। श्लोक संख्या 58। किसी भी स्थल में क्या जाति मात्र से ही कोई मारा जाता है या पूजा जाता है? नहीं, किंतु आचरण के अनुसार मारने योग्य और पूजने योग्य होता है। गृद्धो ब्रूते ब्रूहि किमर्थमागतोऽसि सो वदत् अहमत्र गंगा तीरे नित्यस्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चांद्रायण वर्तमाचरम तिष्ठामि युष्मान्य धर्म ज्ञानरतः प्रेम विश्वास भूम्यः इति पक्षिणा सर्वे सर्वदा ममाग्रे पस्तुवन्ति अतो भवद् भयो विद्यावयो वृद्धेभ्यो धर्मे श्रोतमिहागतः भवन्तश्चैतादृशा धर्मज्ञा यन्माभतीथि हन्तुमुद्धताः गृहस्थ धर्मश्च एषः। गिद्ध ने कहा, बोल यहाँ क्यों आया है? विडाल बोला, मैं नित्य त्रिकाल स्नान करता हूँ, मांसादि नहीं खाता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत पालता हूँ और चांद्रायण व्रत को करता हूँ। इस गंगा के तट पर रहता हूँ, बहुत से पक्षी लोग रोज मेरे पास आकर आप धर्म ज्ञान के प्रेमी और प्रेम तथा विश्वास के पात्र हैं ऐसी आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए विद्या वृद्ध तथा वयोवृद्ध आपको समझ कर आपसे धर्म का स्वरूप जानने आया हूँ, किंतु आप तो ऐसे धर्मज्ञ हैं कि मुझ अतिथि को मारने को तैयार हो गए। गृहस्थ धर्म ऐसा है, रावपयुचितम कार्यमातिथ्यम गृहमागते क्षेतु पार्श्वगताक्षायाम नोपसंहरते द्रुमः। श्लोक संख्या 59। अपने घर में आए हुए शत्रु का भी अतिथि सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी छाया को अपनी शाखा काटने वाले पुरुष से नहीं हटाता है। किंच यदि अन्नम नास्ति तदा सुप्रीतानपि वचसा तावदतिथि पूज्य एव। और यदि घर में अन्न तैयार न हो तो उस समय केवल मधुर वाणी से भी अतिथि सत्कार करने योग्य है। तथा शोक्तम त्रिणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च शून्यता एतानि अपि सत्ता गेहे नोक्षिधन्ते कदाचन। श्लोक संख्या 60। तृणों का बनाया आसन, भूमि, जल तथा चौथी सुमधुर वाणी, ये चार तो साधु जनों के घर में अवश्य होते हैं। अन्यश्च बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूज्या तस्य पूजा विधातव्या सरस्याभ्यागतो गुरु। श्लोक संख्या 61। बालक, वृद्ध या जवान, जो कोई घर में आया हुआ अतिथि है उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सबके लिए गुरुवत पूज्य है। परश्च निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि सहरते ज्योष्णां चन्द्रश्चाण्डालविष्मनः। श्लोक संख्या 61, साधु जन निर्गुण जीवों पर भी दया करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी चांदनी को चांडाल के घर से हटा नहीं लेता है। अनयश्च अतिथिर तस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते तत्तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाया गच्छति। श्लोक संख्या 63, जिसके घर से अतिथि हताश होकर लौट आता है, वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप देकर और गृहस्वामी का पुण्य लेकर चला जाता है। अन्यश्च उत्तमस्यापि वर्णश्च नीचो अपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयोतिथि। श्लोक संख्या 64, उत्तम ब्राह्मणादि के घर पर आया हुआ कनिष्ठ वर्ग का भी अतिथि यथोचित सत्कार करने योग्य है, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय होता है। गिद्धो वदत मार्जारो हि मांसरुचि पक्षी शावकाश्च अत्र निवसन्ति तेनाहमेव ब्रवीमि तक्ष श्रुत्वा मार्जारो भूमिं पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति ब्रूते च मया धर्म शास्त्रां श्रुत्वा वितरागेणेदं दुष्करं वर्तम चांद्रायणम् अध्यवसितम् यतः परस्परं विदमानानामपि धर्मशास्त्राणाम् अहिंसा परमो धर्मः इत्यत्र एकमत्यम्। गिद्ध बोला, विडाल मांस का प्रेमी होता है और इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ से चले जाने को कहता हूँ। ऐसा सुनकर विडाल ने दोनों हाथों से पृथ्वी अर्थात मिट्टी को छूकर दोनों कान छुए और कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र सुनकर माशादी की तृष्णा छोड़कर अति कठिन चांद्रायण व्रत किया है, क्योंकि परस्पर भिन्न भिन्न निर्णय बताने वाले धर्मशास्त्रों का अहिंसा परम धर्म है, इस बात में तो एक ही मत है। यतः सर्वहिंसा निवृत्ता ये नरा सर्वसाहश्च ये सर्वस्याः श्रेयभूताश्च ते नरा सर्वगामिनः। श्लोक संख्या 65, जो लोग सब प्रकार की हिंसा से निवृत्त हो तथा सर्व द्वंद्वों के सहनशील हो और सबके आश्रय दाता हो, वे लोग अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। अन्यश्च एक एव सुहृद् धर्मो निधने अप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यतो गच्छति। श्लोक संख्या 66, एक धर्म ही मित्र है, क्योंकि वही मरने के समय साथ जाता है और सब पुत्र स्त्री आदि का संबंध शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। किंच योति यश्च यदा मांसमो भयो पश्यतांतरम एकस्य छड़िका प्रीतिरन्यः प्राणेण विमुच्यते। श्लोक संख्या 67, जो प्राणी जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों में भेद तो देखिए, खाने वाले को क्षण मात्र तृप्ति होती है और दूसरे के प्राण ही जाते हैं। अपिचा मत्तर्व्यामिति यद् दुःखं पुरुषस्योपजायते शक्यस्तेनानुमानेन परोऽपि परिरक्षितुम्। श्लोक संख्या 68, अपने को अर्थात बड़ी आपत्ति के समय अब मेरा अवश्य मरण होगा, ऐसी चिंता से जितना दुख होता है उतना ही दुख दूसरे को भी होता है, ऐसा समझकर कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। शुणु पुनः स्वच्छंदवन जातेन शाकेनापि पपुर्यते अस्य दग्धोरस्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत्। श्लोक संख्या 69, और भी सुनो, जब वन में स्वाभाविक उत्पन्न शोक पत्र आदि से भी पेट भर सकते हैं, तब उदर के लिए हिंसात्मक बड़ा पाप क्यों किया जाए। एवं विश्वास्य स माजरस्तरु कोटरे स्थिता ततो दिनेषु गच्छतु असो पक्षी शावकानक्रम्य सवकोटरमानीय प्रत्येहं खादति अथ येषाम पत्यानि खादितानि तै शोकार तैर्विल्ल पदभीरित ततो जिज्ञासा समारब्धा तत्परिज्ञाय माजरः कोटरात्रि श्रुत्य बहिः पलायित पश्चात् पक्षीभिरतस्ततो निरुप्यद्भिस्तत्र तरुकोटरे शावकः खादिता इति सर्वे पक्षिभिः। निश्चित्य स गृद्धो व्यापादितः ततोऽहं ब्रवीमि अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि। वह विडाल इस प्रकार जरत गव्य नाम गिद्ध को विश्वास दिलाकर उस वृक्ष की कोटर में रहने लगा और प्रत्येक दिन पक्षियों के बच्चों को पकड़कर अपनी कोटर में लाकर खाने लगा। अब जिन जिन के बच्चों को वह खा गया था, वे सब पक्षी शोकातुर हो विलाप करते हुए अपने बच्चों को खोजने लगे। वह विडाल खोज होने लगी इस बात को जानकर वृक्ष कोटर में से निकलकर अन्यत्र भाग गया। उसके बाद खोज करते हुए पक्षियों ने उस कोटर में अपने बच्चों की हड्डियां पाई। तब सब पक्षियों ने इस जरदगव्य नामक गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खा लिया है, ऐसा निश्चय करके उस गिद्ध को मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञात कुलसिल इत्यादि इत्याकरण्य सजम्बुका सकोपमाह मृगस्य प्रथम दर्शन दीने भवान पी अज्ञात कुलशील एव आसी तत्कथम भवता सह एतस्य स्नेहानुवृत्तिरुत्तरोत्तर वर्धते। वर्षिंगाल ऐसा सुनकर क्रोधपूर्वक बोला, इस हरिण के मिलाप के प्रथम दिन तुम भी तो हरिण के कुलशील को नहीं जानते थे, तो भी तुम्हारे साथ इस हरिण का स्नेह भाव उत्तरोत्तर क्यों बढ़ता जाता है? अथवा यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघस्य तत्रालपधीरपि निरस्तत्पादपे देशे एरडोपि ब्रूमायते। श्लोक संख्या 70। अथवा जहाँ विद्वान जन नहीं है वहाँ अल्प बुद्धि वाला भी श्लाघनीय होता है, जैसे कि वृक्ष शून्य प्रदेश में एरड्ड भी बड़ा वृक्ष कहा जाता है। अन्यश्च अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। श्लोक संख्या 71। हल्के चित्त वाले लोगों की यह अपना है या पराया है ऐसी बुद्धि होती है। उदार चित्त वाले तो समग्र पृथ्वी के जनों को ही कुटुम्बी मानते हैं। यथा चायम मृगो मम बंधुस्तथा भवानपि मृगो ब्रवीत किमनेन उत्तरोत्तरेण सर्वेकत्र विषमभावलापै सुखमनुभव। अन्यश्च अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता अन्यश्च अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। श्लोक संख्या 71। हल्के चित्त वाले लोगों की यह अपना है या पराया है ऐसी बुद्धि होती है। उदार चित्त वाले तो समग्र पृथ्वी के जनों को ही कुटुम्बी मानते हैं। यथा चायम मृगो मम बंधुस्तथा भवानपि मृगो ब्रवीत किमनेन उत्तरोत्तरेण सर्वेकत्र विषमभावलापै सुखमनुभवित भी स्थियताम। जैसे वह मृग मेरा मित्र है वैसे तुम भी मेरे मित्र हो। मृग बोला, इन निरर्थक उत्तर प्रत्युत्तरों से क्या काम है, चलो हम सब एक स्थान में सार्थक वार्तालाप का आनंद लेते हुए बैठे। यतः न कश्चित् कश्चिन्न मित्रम् न कश्चित् कश्चिद् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। श्लोक संख्या 72। स्वभाव से कोई किसी का मित्र है और कोई किसी का शत्रु है, किंतु अच्छा बुरा व्यवहार होने से ही परस्पर मित्र और शत्रु हो जाते हैं। काकेर उक्तम एवमस्तु अथ प्रातः सर्वे यथाभिमत देशम गता एकता निभृतम शिंगालो ब्रूते सखे मृग एतस्मिन्नेव वनेक देशे सस्य पूर्ण क्षेत्रमस्ति तदहं त्वाम तत्र नीत्वा दर्शयामि तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा संशयं खादति ततो दिनकतिपयेन छत्रपतिना तद्दृष्ट्वा पाशास्तत्र योजिता अनन्तरं पुनरागतो मृगः तत्र चरन् पाशैर्बद्धो चिन्तयत् को मात मामितः कालपाशादि व्याघपाशात् त्रातुं मित्रादन्यः समर्थ अत्रान्तरे जम्बुकस्त्रागत्य उपस्थितो चिन्तयत् फलिस्तावदस्माकं कपट प्रबंध मनोरथ सिद्धिरपि बाहुल्यमे भविष्यति यतः एतस्य उत्कृत्यमानस्य मांसाशुंगलिप्तानि अस्थिनि मया अवश्यं प्राप्तव्यानि तानि च बाहुल्येन मम भोजिनानि भविष्यन्ति। स च मृगस्तं दृष्ट्वा उल्लासितो ब्रूते शखे छिन्धि तावनमं बंधनं सत्वरं कायस्व माम। काक ने कहा, वैसा ही हो के बाद प्रातः काल काक आदि सब यथेष्ट प्रदेशों को चले गए। एक बार एकांत में श्रृंगाल ने मृग से कहा, सखे मृग इस वन के एक भाग में धान्य आदि से परिपूर्ण एक खेत है, मैं तुमको उसके निकट ले जाकर बताता हूँ। बताने के बाद वह मृग रोज खेत में जाकर धान्य आदि खाने लगा। कुछ दिन बाद खेत के मालिक ने धान्य को खाए हुए देख कर खेत में जाल लगा दिया। उसके बाद फिर आया हुआ मृग खेत में रखे हुए जाल में फंस गया और चिंता करने लगा कि यमपाश के समान इस व्याघपाश से मित्र बिना दूसरा कोई मेरी रक्षा कर सकता है। उसी समय जम्बुक वहां आया और विचारने लगा कि मेरा कपट से किया हुआ प्रयोग सफल हुआ। मेरे मनोरथ की सिद्धि भी खूब पूर्ण होगी, क्योंकि इस मृग के टुकड़े करने पर मांस और रुधिर से भरपूर हड्डियाँ मुझे खूब मिलेंगी और मेरे बहुत से भोजन होंगे। वह जाल में फंसा हुआ मृग इस श्रृंगाल को देख खुश होकर बोला, हे सखे जम्बुक, जब तक कोई ना आ पहुँचे उतने में मेरा बंधन काट दो और मेरी रक्षा करो। यतः अपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे सुरमिले सुचिम भार्यो चिडेषु चिनेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। श्लोक संख्या 73। आपत्ति में मित्र की, युद्ध में सुरवीर की, ऋण में सत्यवादी की, गरीबी में स्त्री की और दुख पड़ने पर बंधुओं की परीक्षा होती है। अपरंच उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विल्लवे राजद्वारे शमशान च यस्तिष्ठति स बांधव। श्लोक संख्या 74। जो मनुष्य उत्सव के समय, दुख के समय, अन्य भाव के समय, देश पर आपत्ति आने के समय, राज विचार के समय तथा शमशान में जाने पर यथाशक्ति तन मन धन से उपकार करते हैं, वे ही बंधु कहते हैं। जम्बुका पाशम मुहुर्मुहु विलोक्या चिंतयत् दृष्टावद्यम बंधा ब्रूते च सखे नायु निर्मिता पाशा तदत भट्टारक वारे कथमेतान दंते स्पृश्यामि। मित्र, यदि चित्ते न अन्यथा मन्यसे तदा प्रभाते यत्तव्या वक्तव्यं तत्कर्तव्यं इति। अनन्तरं सकाका प्रदोषकाले मृगमनागतं वल्लोक्य इतस्ततो निविश्यन् तथाविधं दृष्टव्या उवाच सखे किमेतत्। मृगनोक्तम् अवधीरत्तु श्रीहृद्वावाक्यस्य फलमेतत् तथा चोक्तम्। श्रृंगाल ने हिरण के बंधन को बार बार देखकर मन में सोचा कि यह बंधन तो बड़ा मजबूत है और कहा कि मृत हिरण स्नायु के बनाए हुए ये जाल हैं। आज रविवार के रोज मैं दांतों से उनका स्पर्श कैसे करूं, क्योंकि रविवार को मांस खाना निषिद्ध है। मृतमिग, यदि तुम अपने चित्त में विपरीत नहीं मानो तो सुबह क्षेत्र स्वामी के आगमन से पूर्व ही जो तुम कहोगे सो मैं करूँगा। इसके बाद वह कौवा सायंकाल के समय मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर खोजते खोजते बंधन में फंसे हुए मृग को देखकर बोला, सखे मृग, यह बंधन कैसे हुआ? मृग बोला, मित्र का वचन नहीं मानने का यह फल है। कहा भी है, सुहृदाम हित कामनाम या शुणोति न भाषितम विपत्त सन्निहित्ता तस्य स नर शत्रु नंदना। श्लोक संख्या 75। जो लोग हितकारक मित्रों के वचनों को नहीं मानते हैं उनको आपत्तियां श्रग आती हैं और वे शत्रुओं के आनंद दाता बन जाते हैं, क्योंकि उनको आपत्ति मग्न देख कर शत्रु लोग खुश होते हैं। काको ब्रूते सवच्चकः कास्ते मृगोक्तम मन्मासार्थी तिष्ठत्रैव। काको ब्रूते, मित्र, उक्तमेव मया पूर्वकम्। काक बोला, यह ठक श्रृंगाल कहाँ है? मृग ने कहा, मेरा मांस खाने की इच्छा रखने वाला वह यही है। काक ने कहा, वह तो मैंने प्रथम ही कहा था। अपराधो न मे स्थिति नैतस्त विश्वासो कारणम विधते ही निशंस शेभयो भयम गुणवक्तामपि। श्लोक संख्या 76। मेरा कुछ भी अपराध नहीं है, इसलिए यह मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगा, ऐसा विश्वास कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रूर पुरुष निरपराधियों का भी पूर्ण अनिष्ट करता है, अतः उससे डर रहता है। दीप निर्माण गंधश्च सुहृदय वाक्य मरुन्धतिम न जिघ्रन्ति न शुण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। श्लोक संख्या 77। जिनका मरण समय समीप आया होता है उनको दीप बुझने पर भी धूम की गंध मालूम नहीं होती तथा वे मित्र का वाक्य नहीं मानते और उन्हें अरुंधति तारा दिखाई नहीं पड़ती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। श्लोक संख्या 78। परोक्ष में कार्य नष्ट करने वाले और समक्ष में मधुर मधुर बोलने वाले मित्र को अंदर से जहर और ऊपर से दूध से पूर्ण घट की तरह त्याग देना चाहिए। ततः काको दीर्घे निस्वश उवाच, अरे मंचका किम तव्या पाप कर्मणा कितम। उसके बाद काक ने लंबा निश्वास छोड़कर कहा, हे धूर्त श्रृंगाल, पाप कर्म करने वाले तूने यह क्या अनिष्ट किया? यतः संलापितानं मधुरे वचनो भी मिथ्योपचारश्च वशीकृतानां आशावतां शुद्धतां च लोके किमर्थिनां वञ्चितव्यमस्ति। श्लोक संख्या 89। जगत में मधुर वचनों से प्रलोभित किए हुए तथा कपट से वश में किए हुए एवं श्रद्धालु और आशा वाले जनों को वंचित करना कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। अन्यश्च उपकारिणी विशब्दे शुद्धिमत्तो य संचारिति पापम तम जनम सत्यसंधम भगवती वसुधे कथम वहसि। श्लोक संख्या 80। हे भगवती पृथ्वी, तुम ऐसे लोगों को कैसे धारण करती हो जो उपकारी शुद्ध विचार वाले एवं विश्वस्त जनों के साथ विश्वासघात का पाप करते हैं। दुर्जनेन समं वैरम सख्यम चापि न कारयेत् उष्णोदहति चांगारः शीतकृष्णायते करम। श्लोक संख्या 81। दुर्जन से वैर अथवा मित्रता कुछ भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दोनों स्थिति में अनिष्ट करता है। जैसे तप्त अंगार छूने से हाथ को जलाता है और ठंडा होने पर छूने से काला करता है। अथवा स्थिति रियम दुर्जनानाम, अथवा दुर्जन पुरुषों का यह स्वभाव ही है, पाकपादियो पतति खादति पृष्ठमासम कर्णे कलम किमपि रोति शनिश्चर विचित्रम छिद्रम निरूप्यम सहसा प्रविशत्य शंकः सर्वे खलस्य चरितम मशकः करोति। श्लोक संख्या 82। मशक में खल पुरुष का सब चरित्र मिलता है, जैसे कि मशक प्रथम परों पर गिरता है, पीछे पीठ पर मांस खाता है और कानों में आकर कपटय युक्त बोलता है और छिद्र देख कर अंत प्रवेश करता है। तथा च दुर्जना प्रीवादि च नैतस विश्वास कारणम मधुतिष्ठते जिह्वाग्रे हरदि हलाहलम विषम। श्लोक संख्या 83। दुर्जन पुरुष प्री बोलता है, लेकिन प्री वचन से ही उसका विश्वास नहीं करना, क्योंकि उसकी जीभ में ही मधुरता रहती है और अंतकरण में तो कपटय रूपी जहर मरा रहता है। अत प्रभाते सा छत्रपतेल गुणहस्तस्तम प्रदेशम आगच्छन काकेनावलोकितः तमवलोक्य काकेन उक्तम सखे मृग तवमात्मानं मृतवस्त संदर्श्य वातेनोदरं पुरयित्वा पादान स्तब्धत कृतिष्ठ अहम् तव चक्षि चंच वाक्यमपि विलिखामि। यदा अहम् शब्दं करोमि तदा तवमुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसे। मृगस्तथैव काकवशिनेन स्थिता ततः छत्रपतिना हर्षोत्फुल्ल लोचनेन तथा मृग अलौकिता अथासो आशवय मृतोऽसि इत्युक्ता मृगम बंधना मुच्चयित्वा पाषाण सवृत्तुम संग्रहीतुम सत्वरो सयत्नो बभूव तथा क्रियदद दूरे अंतरीते छत्रपतो स मृग काकस्य शब्दम श्रुत्वा सत्वमुत्थाय पालयतः तमुदिश्य तेन छत्रपतिना प्रकोपता चित्तेन लघुडेन शृंगालो व्यापादितः। उसके बाद प्रभात में काक ने उस खेत के मालिक को हाथ से डंडा लेकर खेत में आते हुए देखा। उसे देखकर काक ने कहा, मित्र हरण, तुम अपने को मृत के सदृश दिखाकर श्वास से पेट को फुलाकर पैरों को कड़ाई से फैलाकर पड़े रहो। मैं चोच से तुम्हारी आँखों को धीरे धीरे नोचता हूँ, अर्थात छूता हूँ। जब मैं बोलूँ उसी समय तुम उठकर एकदम भाग जाना। वह मृग काक के कहने से वैसा ही मृतवत हो गया। अंतर खेत के मालिक ने दूर से ही प्रसन्नता पूर्वक नेत्रों से फंसे हुए मृग को देखा, किंतु समीप आने पर कहा, आहा, अपने से ही मरकर पड़े हो। ऐसा कहकर मृग को बंधन से मुक्त करके जाल को एकत्रित करते करते थोड़ी दूर हटा कि काक शब्द हुआ और उसको सुनकर मृग एकदम उठकर भागा। तब छत्रपति ने क्रोधित होकर पीछे से भागते हुए मृग के ऊपर ऐसे जोर से लाठी फेंकी कि उस लाठी से बीच में छिपा हुआ शृंगाल मार खाकर मर गया। तथा चोक्तम त्रिभीर वैश्य भी स्त्री भी माशो स्त्री भी पक्षे स्त्रीभीर दिने ही अत्युक्त कटे ही पाप पुण्य है व फलमश्युनुते। श्लोक संख्या 84। अति तीर्व पाप पुण्य के फल इसी जन्म में 3 वर्ष में अथवा 3 मास में 3 पक्ष में या 3 दिन में भोगना पड़ता है। अतो हम ब्रवीमि भक्ष भक्ष कयो प्रीति इत्यादि। इसलिए मैं कहता हूँ कि भक्ष भक्ष कयो प्रीति इत्यादि। इति मृगवाय श्रृंगाल कथा। काक पुनराह। काक ने फिर से कहा, भक्षतेनापि भवता नाहारी मम पुष्कलः तव्ये जीवति जीवामि चित्तग्रीव इवानघः। श्लोक संख्या 85। हे निष्पाप हिरण्यक मुषिकराज, तुमको खाने से मेरा भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं होगा और तुम्हारे जीवित रहने पर मैं भी चित्रग्रीव के समान बहुत से आनंद सुख का अनुभव करूँगा। अन्यश्च त्रिश्वामपि विश्वासो दृष्टा पुण्येक कर्मणाम सत्ताम ही साधु शीलत्वात् स्वभावो न निर्वर्तते। श्लोक संख्या 86। केवल पुण्यशील कार्यों को करने वाले पशुओं का भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो साधु स्वभाव वाले होते हैं उनका सत स्वभाव कभी नहीं बदलता है। किंच साधु प्रकोपित तस्यापि मनोनायति विक्रियाम न ही तापयुक्तम शक्यम सागरांभतलो लक्या। श्लोक संख्या 87। क्रोध दिलाने पर भी सतपुरुषों के हृदय में कुछ भी विकार नहीं होता है, जैसे घास की अग्नि समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती है। हिरण्यको ब्रूते चपलस्त्वम चपलेन सह स्नेहा सर्वथा न कर्तव्य। हिरण्यक ने कहा, तू चपल है, चपल स्वभाव वालों के साथ किसी प्रकार से स्नेह नहीं करना चाहिए। तथा चोक्तम मर्जारो महिषो मेषः काक का पुरुष तथा विश्वासात प्रभवन्ते येते विश्वास तत्र नो हिता। श्लोक संख्या 88। विडाल भैंस भेड़ा काक तथा का पुरुष ये पांच विश्वास करने से भी अनिष्ट करने में समर्थ बनते हैं, उनका विश्वास कभी हितकारक नहीं होता है। किंच अन्यत् शत्रु पक्षो भवनाश्माकम् शत्रुनाम संधीर्ना विधेया। और भी तुम अर्थात कौवा हमारी मुशक जाति के शत्रु हो, इसलिए शत्रु के साथ मेल नहीं रखना चाहिए। उक्तश्च एतत् शत्रुना ही संधेयात् संश्लिष्टानपि संधिना सत्तप्तमपि पानीयम् शमयत्तेव पावकम्। श्लोक संख्या 89। शत्रु के साथ दृढ़ संधि करने पर भी उसका पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खौला हुआ भी उष्ण जल अग्नि को नष्ट कर देता है। दुर्जना परिहर्तव्यो विधया अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। श्लोक संख्या 90। दुर्जन पुरुष के विद्वान होने पर भी उसका सर्वथा त्याग ही करना उचित है, क्योंकि मणि से सुशोभित होने पर भी सर्प सदा मरण भय को देने वाला है। यद शक्यम न तच्छक्यम यच्छक्यम सक्यमेव तत नोदके संकटम याति न च नौग्र गच्छति स्थले। श्लोक संख्या 91। जो असंभावित है वह कभी नहीं हो सकता, और जो शक्य है वही संभव हो सकता है। जैसे जल में रथ नहीं चलता और स्थल में नौका नहीं चल सकती। अपरच महत्ता अप्यर्थ सारेण यो विश्वसिति शत्रुषु भार्याषु च वीरताषु तदंतम तस्य जीवनम्। श्लोक संख्या 92। बड़े भारी प्रयोजन के लिए भी शत्रु में तथा अपने में स्नेह शून्य स्त्री में जो लोग विश्वास रखते हैं तथा उस विश्वास में भी उनका प्राण नाश हो जाता है। लघु पतनको ब्रूते श्रुतम मया सर्वे तथा ममतावानी व संकल्प यदत्तव्यास सौदृष्ट धम अवश्यम करणीयमिति अन्यथा अनाहार्यणा आत्मनम तव द्वारी व्यापादिष्यत्मिति। लघु पतनक काक ने कहा, मैंने तुम्हारा कहना सब सुना, लेकिन मेरा तो यही संकल्प है कि तुम्हारे साथ मित्रता करना। अगर मित्रता नहीं करोगे तो तुम्हारे द्वार पर भी अनशन व्रत करके प्राण तज दूंगा। तथा ही मृद घटवत सुख भेदौ दुख संधानश्च दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनक घंटवत दुर्भेदश्चाशु संधेय। श्लोक संख्या 93। मिट्टी का घड़ा जैसे अल्प प्रहार से भी फूट जाता है और बहुत प्रयत्न करने पर भी फिर उन टुकड़ों का योजन नहीं हो सकता है, वैसे ही दुर्जन का संग भी स्वल्प निमिष से विनष्ट हो जाता है और अनेक उपाय करने पर भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। और सुवर्ण का घट जल्दी फूटता नहीं है, छत होने भर भी अल्प प्रयास से फिर जुड़ जाता है। वैसे सज्जन का संग भी अल्प हेतु से नष्ट नहीं होता और थोड़ा न्यून हो जाने पर भी फिर अल्प प्रयास से संपूर्ण बन जाता है। किंच द्रवत्वात संलोदानाम निमित्ताद मृग पक्षिनाम भयल्लोभाच्च मूर्खानाम संगतम दर्शनात सताम। श्लोक संख्या 94। सब प्रकार के धातुओं का मेल त्रिभाव के कारण से होता है और पशु पक्षियों का मेल खेतों में भोजनादि निमित्त से तथा मूर्खों का मेल भय से या लोभ से होता है और साधु जनों का मेल दर्शन मात्र से ही हो जाता है। किंच नारिकेल समाकारे दुष्यन्ते हि सुहृदजना अन्ये बदरिकाकार बहिरेव मनोहरा। श्लोक संख्या 95। सत्पुरुष नारियल के फल की तरह ऊपर से कठोर
और भीतर से अति मधुर रहते हैं। दुष्ट जन ऊपर से सुंदर और भीतर से बैर के फल के समान, अंदर में कीट काश्य आदि के समान कापट्यादि दोष से युक्त होते हैं।
अतएव सत्ताम संग तिरिष्यते, अतः सत्पुरुषों की संगति चाहते हैं। अनयश्च स्निग्धच्छेदे अपि साधुनाम गुणाम नायान्ति विक्रियाम भंगे अपि ही मृडालानाम अनुबंधन्ति तन्तवः। श्लोक संख्या 96। साधु जनों का स्नेह टूटने पर भी उनके गुण सदा सद्गुण ही रहते हैं, दुर्गुण नहीं हो जाते, क्योंकि कमल का नाल टूट जाने पर भी उनके अंतराल में ग्रथित तंतु अलग नहीं होते हैं। अन्यश्च स्त्रीत्वम त्यागिता सौर्यम सामान्यम सुख दुखयो दक्षिणश्च अनुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद गुणा। श्लोक संख्या 97। पवित्रता दानशीलता सूरता खा दुख में समानता उदारता अनुराग सत्यता ये सब मित्र के गुण है। एतेर गुणे रूपेतु भवदन्यो मया कह सुहित प्राप्तव्य इत्यादि तद्वन्य मार्कन्य हिरण्यको बहि नुषत्या आपायायितो अहम भवतामेतन वचानमृतम। इन सब गुणों से युक्त तुम्हारे बिना दूसरा कौन मित्र मिलेगा इत्यादि वचन को सुनकर हिरण्यक अपने विवर से बाहर निकलकर बोला, आह आपके अमृत वचनों से मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ हूँ। तथा चोक्तम धर्मार्ते न तथा शूषित जले स्नानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुख्यति पत्यंगमर्पितम प्रत्ये सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसा सदुक्तया च परिष्कृतम सुकृतिम नाम कृष्टे मंत्रोपमम। श्लोक संख्या 98। सुंदर नीतिमय युक्तियों से स्फुटार्थ युक्त वशीकरण मंत्र के समान तेजस्वी सुहृदजन का वचन जितना चित्त को प्रसन्न करता है उतना ग्रीष्मवत्ताप्तप्त जन को शीतल जनों से स्नान मुक्ताहार तथा प्रत्यंग में लिप्त चंदन भी शांति नहीं देता है। अन्यच्च रहस्य भेदो यांचा च नैष्ठुर्ये चलचित्तता क्रोधो निसत्यता धूमेतान मित्रस्य दूषणम्। श्लोक संख्या 99। गुप्त वार्ता को अन्यत्र प्रकाश करना धनादि का मांगना क्रूरता रखना चित्त की अव्यवस्थिता क्रोध रखना असत्य बोलना धुत खेलना ये सब मित्रता के दूषण रूप हैं। अनेन वचन कर्मेण तत् एकमपि दूषणम् तव्येन लक्ष्यते। इन सब पूर्वोक्त तुम्हारे वचनों से मालूम होता है कि उनमें से एक भी दूषण तुम्हारे में नहीं है। यतः पटुत्तव्यम सत्यवादितम कथा योगेन बुध्यते अस्तब्धत्व मच्चापल्यम प्रत्यक्षेणावगम्यते। श्लोक संख्या 100। वाक चतुरता तथा सत्यवादिता ये दोनों वार्तालाप से मालूम होते हैं और प्रत्यक्ष से तो उत्साह शक्ति तथा धीरता ये दोनों निश्चित होते हैं, अतः तुम मित्रता के योग्य हो। अपरच अन्यथैव हि सौहार्द सौहार्दे भवेत सच्छानंतरात्मन प्रवर्तते अन्यथा वाणी साठ्योपहचेतसः। श्लोक संख्या 101। स्वच्छांतकरण वाले की मैत्री दूसरे रीति से भी उत्तम भाव से ही होती है। औष्ठात्मा पुरुष की तो वाणी दूसरे ढंग से निकलती है। मनस्यन्यद् वचने वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम मन्यसेकम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मनाम। श्लोक संख्या 102। खल पुरुषों के अंतकरण में कुछ दूसरा ही और कुछ दूसरा ही वचन में रहता है और तीसरा ही कुछ करनी में रहता है। महात्मा पुरुष के हृदय में जो रहता है वही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। तद्भवतु भवता अभिमतेमेव इत्युक्त्वा हिरण्यको मैत्रेयं विधाय भोजन विशेष वार्यशम संतोष्य विवरम प्रविष्टः वायशो अपि स्वस्थानम गतः तथा प्रभृति तयो अन्यो अन्याहार प्रदानेन कुशल प्रश्नैः विषमभालापैश्च कृत कालोति वर्तते एकता लघु पतनको हिरण्यकमाह सखे वायसस्य कष्टतरल भयाहारमिदं स्थानं तदेतत् प्रत्यज्य स्थानान्तरं गतमिच्छामि हिरण्यको ब्रूते। अच्छा तुम्हारी इच्छानुसार ही हो, ऐसा कहकर हिरण्यक मित्रता करके अनेक विध भोजन से काक को संतुष्ट करके अपने विवर में घुस गया। काक भी अपने निवास स्थान पर चला गया। उस दिन से दोनों का परस्पर भोजन देना कुशल समाचार पूछना वार्तालाप करना इत्यादि से कुछ समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र काक का भोजन इस स्थान में अति कठिनाई से मिल रहा है, अतः इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नरः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत। श्लोक संख्या 103। दांत, केश, नख तथा मनुष्य ये चारों अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर नहीं शोभा देते हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अपने स्थान को त्याग न करे। काको ब्रूते, मित्र का पुरुषस्य वचनमेतत्। काक ने कहा, मित्र निर्बल पुरुष का ऐसा बोलना होता है। यतः स्थानमुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरुषा गजा तत्रैव निधनम् यान्ति काकः कापुरुषा मृगा। श्लोक संख्या 104। सिंह, सत्पुरुष, हाथी ये सब अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर जीविका प्राप्त करते हैं और काक, क्षुद्र पुरुष और मृग ये सब जीविका न मिलने पर भी अपने ही स्थान में मरते हैं। अन्यच्च को वीरस्य मनवस्विनः सविषयः को वा विदेशी स्मृतः यम देशम शयते तमेव कुरुते बाहु प्रातापर्जितम् यद् दंष्टा नखलाः गुलुङ्गपहरणः सिंहो वनम गाहते तस्मिन्नेव हतद्वीपेन्द्र रुधिर तृष्णां छिन्नत्यात्मनः। श्लोक संख्या 105। सामर्थ्य युक्त वीर पुरुष को कौन सा अपना देश और कौन सा परदेश है, अर्थात कोई नहीं। वह जिस देश में जाता है वहाँ अपने भुजबल से ही जीवनादि वृत्तियों को प्राप्त करके ही रहता है, क्योंकि दंत, नख, पूछ ये सब शस्त्र हैं, जिनके ऐसा सिंह जिस वन में जाता है वहाँ अपने बल से हाथियों को मारकर अपनी जीवन वृत्ति चलाता है। हिरण्यको ब्रूते, मित्र कक गंतव्यम। हिरण्यक ने कहा, मित्र कहाँ जाओगे। तथा चोक्तम, चलते एकेन पादेन तिष्ठते एकेन बुद्धिमान नाक्समिच्छयम् परमस्थानम् पुरमायतनम् त्यजेत। श्लोक संख्या 106। बुद्धिमान मनुष्य एक पैर से चलता है और एक पैर से स्थित रहता है, अर्थात आगे देख देख कर चलता है, इसलिए प्राप्त करने योग्य स्थान की ठीक ठीक परीक्षा किए बिना प्रथम स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। वायसो ब्रूते, मित्र अस्ति सुनिरूपितम स्थानम हिरण्यको वदत् किं तत् वायशः कथ्यति अस्ति दंडकारेण कर्पूर गौराभिधानम सरः तत्र चिरकालोपार्जितः प्रियशु हन्मे मंत्राभिधानः कुर्मः सहज धार्मिकः प्रतिवशति पश्य मित्र। काक ने कहा, मित्र हिरण्यक एक सुपरिचित स्थान है। हिरण्यक ने कहा, कौन सा। काक ने कहा, दंडक वन में कर्पूर गौर नाम का सरोवर है, वहाँ पर बहुत काल से परिचित स्वभाव से धार्मिक मेरा मित्र मंथर नाम का कच्छप रहता है। ख्याल करो मित्र, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकर्मणीणां धर्मेष्वेव अनुष्ठानम कस्यचित् तु महात्मनः। श्लोक संख्या 107। परोपदेश करने में पांडित्य दिखाना सब मनुष्यों को सहज है, परंतु अपने धार्मिक अनुष्ठान का आचरण कोई एक महात्मा ही करता है। सच भोजन विशेषर्मो समर्थयिष्यति हिरण्यकोऽप्यः तत्किं मत्रावस्थाने आये मया कर्तव्यम्। वह कच्छप अच्छे भोजन से मुझको पुष्ट करेगा। हिरण्यक ने भी कहा, तब तो मैं भी यहाँ रह कर क्या करूँगा। यतः यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तेन च बांधवा न च विद्यागमः कश्चित् तं देश परिवर्जयेत्। श्लोक संख्या 108। जिस देश में सम्मान, जीविका, बंधु जन तथा किसी प्रकार की विद्या प्राप्ति न हो उस देश का त्याग करना चाहिए। अपरच धनिका श्रोतियो राजा नदी वैधस्तु पंचमः पंचयत्र न विधन्ते तत्र वासं न कार्येत। श्लोक संख्या 109। जिस देश में या नगर में धनवान, वैदिक ब्राह्मण तथा प्रजापालक राजा, जलपूर्ण नदी और पांचवा वैद्य ये पांच न रहते हों उस देश या नगर में वास नहीं करना चाहिए। अपरच लोकयात्रा भयम लज्जा दाढ़िश्यम त्यागशीलिता पंचयत्र न विद्धन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। श्लोक संख्या 110। जिस स्थान में लोक यात्रा अर्थात जीविका, राज्य शासन, लज्जा, उदारता और दातृत्व ये पांच ना हो तो उस स्थान में वास नहीं करना चाहिए। अन्यच्च तत्र मित्र न वक्तव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम ऋणदाता च वैधश्च श्रोत्रिया सजला नदी। श्लोक संख्या 111। हे मित्र काक, जिस देश में ऋण देने वाला तथा वैद्य और वैदिक ब्राह्मण एवं जलपूर्ण नदी ये चार न हो उस प्रदेश में नहीं बसना चाहिए। अतो मामपि तत्र नया वायसो वदत् एवमस्तु अथ वायस्तेन मित्रेण सह विचित्रालाप सुखेन तस्य सरसः समीपं यतौ ततो मंत्रो दुरादेव लघुपतनकम् अवलोक्य उत्थाय यथोचित्तमात्थेव्यं विधाय मुषकस्याप्यतिथि सत्कारं चकार। इसलिए मुझे भी वहाँ ले चलो। काक बोला, अच्छा ऐसा ही सही। उसके बाद काक मित हिरण्यक के साथ अनेक वार्ताएं करते हुए उस सरोवर के समीप गया और मंथर नामक कच्छप ने दूर से ही लघु पतनक मित्र काक को देखकर उठकर यथा योग्य अतिथि सत्कार करके मूसक का भी अतिथ्य सत्कार किया। यतः बालो वा यदि वावृधो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधितव्या सर्वत्ताभ्य गतो गुरु। लोक संख्या 112। घर आए हुए बालक अथवा युवा अथवा वृद्ध चाहे कोई भी अतिथि हो उसकी पूजा तथा सत्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब आश्रमियों के लिए अतिथि गुरु तुल्य है। तथा गुरुरग्नि द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु स्त्री नाम सवित्राभ्यगतो गुरु। श्लोक संख्या 113। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। स्त्री का पति ही गुरु है और अतिथि सर्वत्र गुरु तुल्य पूजनीय है। अपरच उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागतः पूजनीयो यथायोग्यम सर्वदेयमयो अतिथि। श्लोक संख्या 114। वयसो वदत सखे मंथर सविशेष पूजामस्मै विधेहि यतोऽयं पुण्यकर्मणां धुरिणः कारुण्य रत्नकारो हिरण्यकनाम मूषिक राजा एतस्य गुणस्तुतिं जिह्वा सहस्रद्वयेनापि यदि सर्पराजः कदाचित् कर्तुमर्थ स्यात् इति उक्त्वा चित्तग्रीवोपाख्यानं वर्णितवान्। ततो मंथरः सादरं हिरण्यकं सपूज्यः भद्र आत्मनो निर्जन वनागमन कारणम् आख्यार्तु महर्षि। हिरण्यको वदत् कथयामि श्रुताम्। काक ने कहा, सखे मंथर इन मूसक राज की पूजा विशेष रूप से करो, क्योंकि धार्मिकों में अग्रण्य करुणा के समुद्र रूप हिरण्यक नाम के ये मूसक राज हैं और शेषनाग भी 2000 जीवों से इनके गुणों का वर्णन करने में कदाचित पार पा सकते हैं। ऐसा कहकर चित्तग्रीव नामक कपोतराज का आख्यान सुनाया। उसके बाद मंथर नामक कच्छप आदर पूर्वक हिरण्यक की पूजा करके बोला, सौम्य भद्र आपका इस निर्जन वन में आने का क्या कारण हुआ सो बताइए। हिरण्यक नामक चूहे ने कहा, कहता हूँ सुनो।